पतित पावन भागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री नारद मुनि ने कहा, अपने शिक्षकों संड तथा अमर्क से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद मौन हो गए। तब एक तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रोध हुए, चुकी हुए हिरण्यकश्यप के दास थे, अतएव अत्यंत दुखी थे। ये प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करने के लिए इस प्रकार बोले। कृपा करके इस अनुवाद को दोहराइए। श्री नारद मुनि ने कहा, अपने शिक्षकों संड तथा अमर्क से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद मौन हो गए। तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रोध हो गए, चूंकि ये हिरण्यकश्यप के दास थे, अतएव वे अत्यंत दुखी थे। वे प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करने के लिए इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। तो जैसे हम लोग प्रसंग सुनते आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज के विषय में इससे पीछे चार जो श्लोक है, प्रहलाद जी ने अपने गुरु जो तथाकथित उनके गुरु थे संड और अमर्क, उनसे उन्होंने कहा, क्योंकि आज के अनुवाद में भगवान जी लिखते हैं कि ब्राह्मणाय ब्राह्मणों को कुछ कह करके प्रहलाद मौनी बन गए, मतलब चुप हो गए। शास्त्र में यह विदित है कि अगर भगवान के विषय में बोलना हो तो मुनि शब्द की परिभाषा बताई गई है कि जितना शक्ति हो उतना बोल सके। भगवान के विषय में जितना बोलना हो बोल सके उसे मुनि कहते हैं। संसारिक धरातल पे जब संसार का वर्णन करना हो तो जितना चुप रहे तो उसको मुनि या मौनी कहा जाता है। तो जो तर्क दे रहे थे प्रहलाद जी अपने तथाकथित गुरुओं से, क्योंकि गुरु लोगों ने बहुत फुसला करके प्यार से उनसे पूछा कि ये बताओ कि जो तुम्हारी ये मति है, जो तुम्हारी ये बिगड़ी हुई बुद्धि है, ये कहाँ से आई? आप सोचिए, हम लोग अगर विचार करें इन शब्दों पे, पीछे हट करके देखें तो किसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है? अगर देखा जाए तो तथाकथित संड और अमर्क की बुद्धि बिगड़ी हुई है, क्योंकि शास्त्र में या नीतिकार ने एक श्लोक में लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन हो यही भेगे नाश। सचिव मतलब राजा का मंत्री, धन के लोभ में या किसी भी परवस्ता के कारण अगर राजा से कुछ छिपा देता है तो वह असली मंत्री नहीं कहा जाता, क्योंकि उस राज्य को बर्बाद करने में उस मंत्री का पहला हाथ होता है। अगर नहीं बताता है अपने राज्य की कमियों को, राजा के भय से या राजा की कमी को नहीं बताता है मंत्री, तो निश्चित रूप से वह मंत्री राजा की रक्षा नहीं कर पाएगा, राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगा। अगर कोई वैद्य है, डॉक्टर है, पैसे के लोभ से भयंकर रोग को छिपा देता है और उसका ठीक से निराकरण नहीं करता है तो कहा जाता है कि वह वास्तविक वैद्य नहीं है, एक बार ठीक से उपचार नहीं कर पाया। वैसे ही अगर गुरु धन के लोभ में वास्तविक ज्ञान अपने शिष्य को नहीं दे पाया, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पाया, का पद नहीं निभा रहा है। वो चीज इस प्रसंग में झलकता है कि एक ही जो संड और अमर्क थे वो हिरण्यकश्यपु के राजमहल के राजनीतिक विद्या के अध्यापक थे, अर्थशास्त्र राजनीतिविद राजनीति का प्रचार करते थे, अर्थात उनको समझाते थे, अर्थशास्त्र के विषय में ज्ञान देते थे। यह ज्ञान गौड़ ज्ञान के रूप में प्रहलाद महाराज ने इसको भी हासिल किया। जिस पाठ को पढ़ाते थे संड और अमर तथा कथित जथावत प्रहलाद महाराज वैसे ही सुना देते थे। लेकिन पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं, हम लोग सुन चुके हैं कि वो प्रहलाद जी के मन में वो बात बैठती नहीं थी, शास्त्र युक्ति युक्त नहीं थी। इसलिए उन शब्दों को, उन गुरु के वाक्यों को उतनी गहराई से उन्होंने अपने जीवन में हासिल करने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि गुरु लोगों ने पूछा कि तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई, तो प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए मन ही मन कहते हैं कि जिस भगवान यह जदा सह जदा अनुवत, ऐसा शब्द आया है पिछले वाले श्लोकों में कि जब जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं तब भगवान के यथावत वाक्यों को व्यक्ति कोई समझ पाता है, अन्यथा कोई नहीं समझ पाए। अब हम इन वाक्यों से हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद जी भगवान के कितने नजदीक थे। प्रहलाद जी कहते हैं अपने गुरुओं से कि भगवान की माया ने, भगवान की माया ने आप लोगों की बुद्धि को अगर देखा जाए तो ग्रसित कर लिए, इसलिए हमारी बुद्धि को आप लोग कह रहे हो कि आपकी बिगड़ी हुई बुद्धि है। प्रहलाद महाराज ने यथावत एक शब्द, बहुत शास्त्र संगत शब्द उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा है कि जिनकी पाशविक मतलब धारणा होती है पशुवत, जो केवल आहार निद्रा भय और इन्हीं चार कार्यों में लगे रहते हैं संसारी कार्यों में, उनकी इस प्रकार की मति होती है। भगवान पर दोषारोपण करें, भक्त पर दोषारोपण करें, लेकिन ये सारी चीजें प्रहलाद जी को छू नहीं पाती थी, क्योंकि बहुत पीछे वाले श्लोकों में अगर पढ़ेंगे चार पांच लगभग चार चौथे या पांचवें श्लोक में इस अध्याय के, तो उन्होंने पहले ही इस बात को उतनी गहराई से नहीं लिया। क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा कि मैं वैसी विद्या को ग्रहण नहीं करना चाहता हूं जिसमें अपना और पराया का भेदभाव हो। मूल कारण यही था कि प्रहलाद जी ने इस विद्या को, असत विद्या को उतनी गहराई से नहीं लिया। अब हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी भी ये संसारिक विद्याएं, जितने भी हम लोग हासिल करने के प्रयास में हैं, जितनी भी खर्च किया जा रहा है पैसा, उसको हम कौन सी विद्या कह सकते हैं। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुश करने के लिए अगर इन विद्याओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो समझिए कि यह पाशविक वृत्ति है, पाशविक विद्या है। क्योंकि इन सब विद्याओं से अगर हम भगवान से जितना ही दूर होते जाते हैं तो इस विद्या का कोई सार है या कोई तत्व नहीं निकलता। उस विद्या को हमें अपने जीवन में हासिल करने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम भगवान के और नजदीक बढ़ते जाएं। प्रहलाद महाराज के वाक्यों से पता चलता है कि वो कितना भगवान के नजदीक थे। कहते हैं कि हमारे गुरु लोगों की बुद्धि को माया ने, भगवान की माया ने उनको कुपित कर दिया, भगवान की कृपा को उठा दिया है, जिससे भगवान की कृपा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें अगर भगवान की वास्तविकता पर अगर पूर्णतः विश्वास है तो माया तो भगवान के भक्तों के परछाई तक भी, परछाई के नजदीक भी नहीं आती, प्रतिछाया के नजदीक तक नहीं आती। पिछले वाले श्लोक में यह भी बताया गया है, प्रहलाद जी की यह उक्ति है कि वेदवादिना, जब जो वेद शास्त्रों के शास्त्रज्ञ है, तथा कथित कर्मकांडी या जो संसारिक विद्या में पारंगत लोग हैं, उनके भी बुद्धि को माया मोहित कर लेती है। फिर ब्रह्मा जी का भी नाम प्रहलाद जी ने दिया कि ब्रह्मा जैसे जो सृष्टि के प्रथम जीव को भी माया कभी कभी भटका देती है। तो हे गुरु लोग, अगर तथाकथित आप लोग भटके हुए हो और मेरे सही बुद्धि को अगर आप लोग उल्टी सोच रहे हो, तो इससे यह हासिल कर लेना चाहिए कि किसकी बुद्धि, आप लोगों की बुद्धि उल्टी है। क्योंकि जो संसारिक आंखों से देखने वाले हैं, इन अध्यात्म विषयों में घुस नहीं पाते, क्योंकि माया रूपी पिशाचिनी ने उस आध्यात्मिक विद्या की आंख को अंधी बना देती है। क्योंकि माया से ग्रसित जीव है तो अध्यात्म पथ को नहीं पकड़ पाता, और जहां भेद बुद्धि है, अपनत्व की भावना है, अहम ममेति है, वहां तो और भगवान से दुरावा होता है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, शशि गौर निताय की। तो खास करके अब इस श्लोक के ऊपर हम लोग विचार करने का प्रयास करें कि प्रहलाद जी लास्ट में अपने गुरुजन गुरु वर्गों से यह कर करके यह बताएं। उसने के बाद मेरे लास्ट के श्लोकों में प्रहलाद जी ने यह कहा अपने इस उक्ति में, हे ब्राह्मणों, हे अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक के नजदीक अगर लोहा अपने आप नजदीक में अगर रखा जाए तो चुंबक का यह गुण होता है कि लोहे को अपने पास खींच लेता है, वैसे ही मेरी यह नैसर्गिक प्रवृत्ति है, मेरा ऐसा स्वभाव ही बन गया है कि मैं उनके वाक्यों से, उनके रूपों से, उनके लीलाओं से इतना ग्रसित हो चुका हूं कि मैं उनके तरफ, उनके नजदीक चलते जा रहा हूं। कितना सुंदर उदाहरण प्रहलाद जी ने दिया। इसको कहते हैं प्रहलाद जी बल्कि यहां शिष्य नहीं है, बल्कि उन अध्यापकों के गुरु हैं अगर कहा जाए तो, कि जो गुरु अध्यात्म विद्या को ठीक से पहचान ही नहीं पा रहा है, अपने शिष्य को नहीं पहचान पा रहा है, वो क्या ज्ञान देगा। प्रहलाद जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, हे अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोहा स्वतः चुंबक की ओर भागता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट होती है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसकी कृपा से वो चाह रहा है कि मैं उसके नजदीक जाऊं, मैं अपने आप उस तरफ जाता रहूं। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की प्रहलाद जी के ऊपर। जाकी जासना ताही की उपासना, रमेश बाबा ने कथा में गाया है इस पद को, कि अगर जिसकी भावना जिस प्रकार की होती है और रमने का प्रयास करता है, उस पथ को पकड़ने का प्रयास करता है, तो उस प्रकार के रास्ता उसको मिल जाता है। खोजे तो सही भाव से। अब अपने हृदय की असली भाव को प्रहलाद जी ने यहां रख दिया गुरुजनों के समक्ष कि मेरा स्वभाव ही ऐसा बन चुका है, मैं क्या करूं। और वो भी जिसके प्रति, जो चक्रधारी है उसके प्रति, उसका भी स्वभाव ऐसा ही है कि जो उसके तरफ जाना चाहता है उसको छोड़कर, छोड़ना तो जानता है नहीं, पकड़ना जानता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति विशेष कही गई है कि कृष्ण पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। अपने भक्तों के भक्ति से बोझित होकर के भगवान तीन जगह त्रिभंग ललित मुद्रा में टेढ़े हैं कि अगर कदाचित माया को देखने का प्रयास करके अगर भक्त उनसे खींच करके दूर भागना चाहे तो भगवान तीन जगह से फंसाए हुए, तू जा ही नहीं सकता, कहां जाएगा, नहीं छोड़ सकता। पकड़ने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण नहीं जाने देंगे, हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो दूर है स्थिति। यह प्रभुपाद जी ने कल के श्लोकों में के तात्पर्य में लिखा है कि अगर इन भावनाओं की तुलना करनी है तो ब्रजवासी भक्तों के भाव को देखो, कैसे वे स्वभावतः आकृष्ट होते हैं। एक शब्द पर प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य है, इतना बड़ा, जो चुंबक के प्रभाव से, चुंबकत्व के गुण से जैसे लोहा खींचता जाता है चुंबक के नजदीक, वैसे भगवान के वात्सल्यता के कारण, उनके प्रेम के कारण ब्रजवासी कितने भगवान के तरफ नजदीक होते जा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य में दिया। रामचरितमानस में भी एक जगह कोलवीरों के प्रसंग में आया है, कोलवीर लोगों की शायद उक्ति है, भगवान राम को, सीता को और लक्ष्मण को जब जंगल में घूमते हुए देखते हैं तो एक तक देखते हुए रह जाते हैं, ये विमोहनी रूप कहां जा रहे हैं नंगे पांव इस जंगल में। कोलवील की आंखें तो भगवान राम के शरीर से हट ही नहीं रही हैं, लेकिन फिर अपना नजर इधर उधर घुमाते तो देखते हैं कि पेड़ पौधे पक्षी जितने भी इस चर अचर जगत के जितने भी जीव हैं वो स्वयं भगवान राम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक कवि ने लिखा है कि कौन ऐसी सती स्त्री होगी जो भगवान के, जो भगवान कृष्ण के स्वरूप को, छवि को देखने के बाद उसका सतीत्व भंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर्वरूप परिपूर्ण वही है। इतने आकर्षक रूप है भगवान का कि कोई भी जीव उनके तरफ आकर्षित हो जाएगा, और भगवान के तरफ आकर्षित होना ही यही सतीत्व का मुख्य लक्षण है, यही असली सतीत्व है। इसलिए साधु को सत्पुरुष कहा जाता है। सत्पुरुष का अर्थ है कि वो सही चीज के पीछे भागता है। इस संसार के असत असत चीजों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होती, इसलिए असली शब्द, अपने असली हृदय के भाव को प्रहलाद जी ने अध्यापकों से कह करके और चुप हो गए, नहीं अब कुछ नहीं होगा। यहां चुप रहने से एक अर्थ और निकलता है कि प्रहलाद जी इसलिए चुप हो गए कि कौन इन लोगों से समय का अपव्यय करे। अरे कम बोलना, हमने संकेत में कह दिया, अगर समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं। क्योंकि इस अध्याय में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो स्वयं गुरु पुत्रों ने कहा है, शुक्राचार्य जी के पुत्रों ने कहा है कि न मत प्रणीतम न परणीतम, कि ये हिरण्यकश्यपु जी यह हम लोगों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान इसके हृदय में नहीं है, न पर प्रणीतम न किसी दूसरे के द्वारा यह दिया हुआ ज्ञान है, नैसर्गिक की भक्ति है, नैसर्गिक की स्वभाव ही इसका है तो भगवान की तरफ जा रहे हैं, यह हमारा और किसी का ज्ञान नहीं है, इसका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है। इस प्रकार के स्वभाव में हमें रमण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि द्वादश महाभागवत जो है उसमें प्रहलाद जी है, क्योंकि इन सब स्थितियों को ठीक से समझ रहे थे इसीलिए और नजदीक भगवान के पास जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, उनका भाव कभी भंगित नहीं हुआ। इसी प्रकार की स्थिति को हासिल करने का हमें प्रयास करना चाहिए। आज के श्लोकों के शब्दों को हम लोग देखें कि इस प्रकार कह करके इतना प्रहलाद जी चुप हो गए। ऐसे एक कथा तो नारद जी और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चल रही है, लेकिन प्रसंग है कि प्रहलाद जी अपने गुरुओं से कुछ कह करके चार श्लोकों में और चुप हो गए। उसके बाद और गुरु लोगों के मन में यह भाव आया, थोड़ा सा झिझक करके, कुपित होकर के, रुष्ट होकर के, अब थोड़ा रुष्ट होकर के गुरु पुत्रों ने उनको अब अनादर की भावना से झुझलाते हुए उन्होंने आगे कहा। आज के श्लोकों में उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल अपना सकल स्वरूप ऐसा बना लिया, ऐसा अपने मन में ऐसा भाव उठाने लिया कि यह सुधरने वाला नहीं है। आगे के श्लोक में आएगा, बहुत घोर शब्द में बोलते हैं गुरुपुत्र, अनियताम रे गुस्से में, कि मेरे वेद को लाओ रे, गुस्से में बोलते हैं कि अब ये सुधरने वाला नहीं है। गुस्सा में कहते हैं कि मेरे वेद को लाओ, मेरे डंडा को लाओ, अब चार दंडों में से चौथा जो दंड है उससे ये सुधरेगा। अरे तुम लोग क्या सुधरो, तुम लोग तो अपने को सुधारो, उनको क्या सुधारोगे। इसीलिए साधु लोग इस बात को हमेशा दोहराते रहते हैं कि अपनी सुधार सबकी सुधार। अगर हम लोग अपने अपने सुधारने में लगे हुए हैं, अगर अपने को हम सुधार लेते हैं तो हमारे हाव भाव से किसी दूसरे को कुछ मिल जाए, लेकिन हम खुद नहीं सुधरे और दूसरे को बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो कहां से सुधर पाएगा। यही उक्ति है शुक्राचार्य जी के पुत्रों का। अब असली ज्ञान को हिरण्यकश्यपु भी ग्रहण नहीं कर पाया, और उनके राजसेवक होने के कारण, नौकर होने के कारण गुरु पुत्र लोग भी नहीं ग्रहण कर पाए, और इनके भाव को जानते हुए प्रहलाद ने सूत्र रूप में दे दिया, तुम लोग समझो या नहीं समझो, लेकिन उनकी बुद्धि मारी हुई थी इसलिए कुपित होकर के, प्रहलाद से रुष्ट होकर के आगे वाले श्लोक में गुस्सा करके बोले। और कोई बालक होंगे वहां आसपास में, कहेंगे अरे भाई तुम लोग जरा मेरा पेट तो लाओ, जरा हम इसका खबर लें, कहां इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, ये कैसे सुधरेगा। लेकिन जिसको भगवान ने जिसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है, अपने तरफ खींच लिया है, उसकी पाश्विक दोषयुक्त बुद्धि को उन्होंने दूर भगा दिया है। कृष्ण के पास, अरे प्रहलाद के पास वैसी कोई पाशविक प्रवृत्ति थी ही नहीं, तो इन असुर विद्या में वो फंसेगा। इसीलिए आचार्य लोग कहा करते हैं कि भगवान के कही हुई इन मुक्तियों को केवल दोहराते रहने से, गुरु के वाक्यों को दोहराते रहने से अपने अंदर इतनी पवित्रता आती है कि हम सुधर जाए। लेकिन हम कुछ गुरु से भी ज्यादा ही हम कुछ और हासिल करना चाहने के चक्कर में पड़ते हैं, जिसे और गड्ढे में चले जाते हैं। अरे हमारे गुरु जी को कुछ नहीं आता, हम तो उनसे भी ज्यादा जानते हैं। और यही प्रवृत्ति किसी को भी गड्ढे में ले जाती है। यहां असली तत्व को तथाकथित गुरु नहीं समझ पाएंगे। हम लोग भागवत की महात्मा को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें गोकर्ण और गोकर्ण जी को सत्ता परायण की विधि को सुनाते हुए चारों कुमार बताते हैं कि भागवत जैसा समर्थ ग्रंथ और कोई नहीं है। एक महात्मा के श्लोक में उन्होंने कहा है, मैं जैसे आगे के श्लोक को जैसे बताया कि गुरु पुत्रों ने कहा है कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतोवद सतोत्रुव नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, इस बालक का नैसर्गिक मति है कि विष्णु के प्रेम में पड़ते जा रहा है। हम लोगों ने या और किसी ने, अन्य लोगों ने नहीं सिखाया इसको। न पर प्रणीतम का अर्थ है कि और किसी के द्वारा दिया हुआ अगर ज्ञान नहीं है। नैसर्गिकी मति रस्य राजन, इसकी नैसर्गिक मति है। हे राजन, आप दोष बुद्धि हमारे प्रति मत लीजिए कि हम लोगों ने पढ़ाया है इसको। डर के बारे में बोल रहे हैं इस श्लोक को। नियच्छा मन्यु कददास मान, इसलिए ऐसा आप मान लीजिए कि हम लोगों ने इस प्रकार के ज्ञान को नहीं दिया। महात्म्य के श्लोकों में एक श्लोक में चारों कुमार भागवत की महता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुनना भगवान के विषय में कितना प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि बुद्ध बुदा इवतो येसु, इससे पहले एक श्लोक में और उन्होंने कहा है कि आत्रम शुष्कम लघु स्थूल वाङ्मन कर्म विकृतम श्रवणम विद्यहेत पापम पावक संविथोत्यदा समयोत यथा। कहते हैं कि आद्र गीला या शुष्क, लघु जितने छोटे बड़े पाप हैं, स्थूल या सूक्ष्म पाप है, मन से हमने सोचा, शरीर से हमने किया, वांग भी वाणी से हमने पाप किया, मतलब हर अंग से जो भी हमने पाप किया, कर्म भी कृतम और कर्म से भी हमने पाप कर्म किया, छोटा बड़ा शरीर से मन से बुद्धि से जितना भी हम लोगों ने पाप किया, उन पापों का क्षण में भस्मीकरण कैसे होगा? तो कहते हैं कि श्रवणम विदहतेत पापम। विदहतेत का अर्थ है कि जैसे अग्नि जब अपना प्रकाश दिखाता है कि सारे संसार की सारी वस्तुओं को डाल दीजिए वो भस्म कर जाएगा, सारे संसार को अग्नि पचा सकती, वैसे ही जितना बड़ा छोटा या किसी भी प्रकार का हम लोग पाप किए हो, लेकिन भागवत ऐसा समर्थ है कि जैसे ही हम भागवत को सुनते हैं तो विदह एक पापम, वह भागवत के अग्नि रूपी प्रकाश से, अग्नि रूपी दाहिका शक्ति से वो पाप अपने आप भाग जाते हैं। रहने का तो सवाल ही छोड़िए, अग्नि लगते ही भागवत की कथा की आग जिसके शरीर में लगा तो वह पाप अपने आप भागा। इस प्रकार की कथा में अगर जिनकी रुचि नहीं है तो ये समझिए कि इन अर्थों को क्या समझ पाए, कितनी उत्सुकता पूर्वक कथा सुननी चाहिए। आगे भागवत की कथा का महात्म बताते हुए कहते हैं चारू कुमार गोकर्ण जी से कि अगर व्यक्ति की रुचि अगर भागवत कथा सुनने में नहीं है तो बेकार का वो इस संसार में मरने के लिए आया। दो जीवों का उदाहरण देते हुए कहते हैं, दो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बुदबुदा इव तोयेषु, बुदबुदा इव तोयेषु, जैसे जल में बुदबुदा होता है बुलबुला हुआ कुछ देर के लिए उत्पन्न होता है और वो नष्ट हो जाता है। बुदबुदा इव तोयेषु मस्का इव जंतुषु, जैसे जल में बुदबुदा पैदा हुआ और इस संसार में जैसे मच्छर पैदे हुए और कुछ दिन के बाद कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाते हैं। जायन्तो मरणायैव कथा श्रवणम वर्जितः, वैसे ही वो व्यक्ति मच्छर और बुलबुले की तरह मरे हुए हैं जो कथा श्रवण वर्जित है, जो भागवत कथा के श्रवण में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाते, वो बेकार ही इस मच्छर और बुलबुले के तरह इस संसार में आए। एक जगह तो एक नीतिकार ने एक श्लोक में लिखा है या भागवत में कपिल देव जी ने शायद माता देवती को कहा है कि जो जीव अगर मनुष्य शरीर धारण करने के बाद इन मेरे चरित्रों में अगर रमण नहीं करता, भगवान कपिल देव कहते हैं कि इन भगवत गुणानुवादों में अगर किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता तो वह केवल अपने मां को पीड़ा प्रदान करने के लिए, दुख देने के लिए अगर यह ग्रंथ है, इसीलिए इसको अमर पुराण कहा जाता है। इसको सुनने की कितनी उत्सुकता होनी चाहिए, इन महात्म्यों के और अन्य श्लोकों के भाव को पढ़ने के बाद तो पता चलता है। और यही भाव था प्रहलाद जी के अंदर और यही भाव हम लोगों को अपने गुरुजन के प्रति होनी चाहिए, आचार्यों के प्रति होनी चाहिए, तब यथावत इन अर्थों का, इन पवित्र ग्रंथों का हम रसा स्वादन कर पाएंगे। तो पढ़ने को तो बहुत कुछ, बोलने को तो बहुत कुछ बोल जाते हैं लोग, आधा घंटा 45 मिनट की हम लोगों की कथा होती है, इसमें हम लोग इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि हम लोग लगता है कि पूरे भागवत 40 मिनट में हम खत्म कर देते। अरे एक शब्द हम समझेंगे और उसके ऊपर विचार करेंगे तो उतने से ही हमारा जीवन काफी मात्रा में ऊपर उन्नति कर सकता है, एक शब्द को सुनने मात्र से। इसलिए इन अर्थों को आचार्यों के भाषा में भी समझने का प्रयास करने चाहिए। प्रभुपाद जी एक श्लोक एक शब्द के ऊपर चुंबकत्व गुण के आधार पर भक्तों के हृदय की चुंबकत्व भाव को उन्होंने वर्णित कर दिया। ब्रजवासियों के भाव के पीछे देखो कि कैसे वो भागते थे, अपने घर में खाने पीने की कोई सुधि नहीं रहती थी, कोई माँ अपने बच्चे को दूध भी पिला रही तो वो भूल गई। यह नैसर्गिक प्रवृत्ति था, भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक ही प्रेम था। अगर इसके हजारवां हिस्सा का भी करोड़ों भाग भी अगर हमारे मन में, हम लोगों के मन में इस प्रकार का भाव आए तो हम कृष्ण के प्रति भागेंगे, कृष्ण के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वह भी भाग नहीं है। सुनने के बाद भी भाव नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? जब नहीं सुने। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अब इस श्लोक के ऊपर, शुक्राचार्य जी के पुत्रों के ऊपर कसते हैं। शुक्र का अर्थ है बीज, सबकी जन्म की शुरुआत बीज से होती है। प्रभुपाद जी ने शुक्र शब्द का उन्होंने अर्थ लिखा है शुक्र आचार्य, कि शुक्राचार्य जी के बीज से उत्पन्न हुए थे दोनों संड और अमर्थ थे। तो जाति के ब्राह्मण, लेकिन अपने गुण से वंचित थे। पिता के बीज से उत्पन्न हुए लेकिन ब्राह्मणत्व के गुण से दूर थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि असली ब्राह्मण का स्वभाव क्या होना चाहिए, उसके हृदय की भाव किस प्रकार की होनी चाहिए, और ब्राह्मण शब्द का कोई साधारण अर्थ नहीं है। अगर ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो संसारिकता भ्रमण करने का प्रयास करता है तो ब्राह्मण नहीं है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम लोग समझने का प्रयास करें कि प्रभुपाद जी का भाव कितना गहरा था और उस भाव को हम कैसे अपने हृदय में ग्रहण करें। श्रील प्रभुपाद महाराज की जब वो कृपा करेंगे तभी यह तात्पर्य समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुक्राचार, शुक्र का अर्थ है वीर्य, अर्थात शुक्राचार्य के पुत्र जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन ध्यान देना गुण से ब्राह्मण नहीं थे। प्रभुपाद जी का दोनों तरफ अर्थ चल रहा। किंतु असली ब्राह्मण तो वह है जिसमें ब्राह्मण के गुण पाए जाए। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि असली ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भक्ति परक स्थितियों में अपने आप को रवाए रहता है। संड तथा अमर शुक्राचार्य के बीज से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण तो थे, किंतु उनमें असली ब्राह्मण के गुण नहीं थे, क्योंकि वे हिरण्यकश्यपु की नौकरी करते थे। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के बाद जीवों के कल्याण हेतु कार्य करने वाले हैं तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से हुई है। जब ये मुख ही शुद्ध नहीं रहेगा तो और क्या शुद्ध हो सकता है। जब ब्राह्मण का मुख ही शुद्ध नहीं है, आचरण ही शुद्ध नहीं है, अब विचार कर लीजिए कि आज के ब्राह्मण कितने शुद्ध हैं। मुख में, जिस मुख में सूरती और बीड़ी और पान और तंबाकू रहता है, एक तरफ से वेदों का वो श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं तो कितने शुद्ध हैं। अपने को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। सूची मुख से इस सूची ग्रंथ को हम स्पर्श कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने असलियत के अर्थ में इसको ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि दास्ता में आदमी बिक जाता है, पैसे के चक्कर में ही यहां अपने गुरु पद से दूर जा रहे हैं संड और अमर्थ। इसलिए शिष्य को भी वैसे गुरु नहीं ग्रहण करना चाहिए जिससे कुछ मिल जाए, मतलब संसारिक चीज, उस भाव से गुरु ग्रहण नहीं करना चाहिए। और गुरु को भी उस प्रकार का शिष्य नहीं ग्रहण करना चाहिए कि इससे कुछ धन की प्राप्ति हो। क्योंकि इस प्रकार के प्रवृत्ति वालों को मानसिकता को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि दोनों के दोनों जाएंगे नरक में, न गुरु शिष्य का उद्धार कर पाएगा और न गुरु शिष्य का, न शिष्य गुरु का कुछ मदद कर पाएगा। क्योंकि दोनों की भावना उल्टी दिशा में। प्रभुपाद जी जो यहां संकेत कर रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु के नौकर थे संडोरवर्ग, इसीलिए उल्टी चीज उनको समझ में आती थी। प्रहलाद जी ने सीधी चीज कहा तो नहीं समझ में आया, क्योंकि दिखाई देता था कि कहीं हमारा वेतन भी ना चला जाए और हमको राजमहल से बाहर न जाना पड़े। वास्तविक रावण को किसी भी कृष्ण का भक्त बनते देखकर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। यह नहीं कि यार ये तो मेरे से भी आगे बढ़ गया, आया कम दिन में आगे बढ़ना शुरू हो गया। अरे भक्ति की आंखों से देखे वो तो द्वेष नहीं है, और आंखों से हम लोग देखेंगे कि प्रहलाद ने पहले ही उस विद्या को साइड में कर दिया भैया, जहां हम अमेती है या मेरा है अपना है पराया है तो हम उसको नहीं लेंगे, हम उस ज्ञान को लेंगे। ऐसे ब्राह्मण अपने परम स्वामी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। परम स्वामी तो भगवान ही है। पति का अर्थ एक विद्वान व्यक्ति ने लिखा है कि पति का अर्थ है कि पालयति इति पति, जो सब प्रकार से सब तरह से जो पालन करता है वो पति है। कोई संसारिक पति किसी को सांस दे सकता है, हवा दे सकता है? कहां से हवा देगा, कहां से पानी देगा, कहां से पृथ्वी देगा? इसलिए वास्तविक पति भगवान है। अब हम उस पति से अपनी हम नाता नहीं जोड़े हैं तो संसारिक पति किसका होगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने असली स्वामी की खुशामद के लिए कार्य करना चाहिए। भागवत का प्रथम स्कंद पहले या दूसरे अध्याय में कहा गया है कि हमें जो कुछ भी कार्य करना चाहिए संस्कृति हरि तोषण, भगवान की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए, न कि किसी की और खुशामद करने के लिए। ब्राह्मण को किसी अन्य का दास बनने के लिए बस वर्जित किया गया है, क्योंकि यह तो कुत्तों तथा सूत्रों का कार्य है। कुत्ते को कोई रोटी देता है तो घर पे भोगो करता है, शूद्रों को पैसा दिया जाता है नौकरी करते हैं, तो यह काम ब्राह्मणों का नहीं है। प्रभुपाद जी ने यह लिखा स्पष्ट, क्योंकि यह तो कुत्तों तथा शूद्रों का कार्य है। कुत्ते को अपने स्वामी को प्रसन्न रखना है, लेकिन ब्राह्मण को अन्य किसी को प्रसन्न नहीं करना होता, केवल भगवान को खुश करना होता है। इसलिए भगवान ने मुख में ब्राह्मणों को रखा। 11वें स्कंद में हम लोग पढ़ते हैं कि कलयुग में खास करके सबसे बड़ा आहुति है शुद्ध वैष्णवों के मुख के आहुति, मुख में आहुति डालने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं अपने वैष्णवों के मुख से आहुति ग्रहण करता हूं, अर्थात कोई अच्छा प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगा करके भक्तों को खिलाए तो भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन ब्राह्मण को अन्य किसी के प्रसन्न नहीं करना होता, उसे मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। अनुकुल्येन कृष्णानु अनुशीलनम्। ब्राह्मण की असली योग्यता यही है, चूंकि संड तथा अमर जन्मना ब्राह्मण थे और हिरण्यकश्यपु जैसे स्वामी के दास हो गए थे, अतः व्यर्थ ही प्रहलाद महाराज को दंडित करना चाहते थे। अगले श्लोक का भी प्रभुपाद जी ने संकेत कर दिया कि अब चौथा दंड के लिए धड़का रहे हैं कि वेद लाओ, अब इनको अब वेद से हम मनाएंगे, ऐसे नहीं मान रहे थे। अरे तुम वेद से क्या मनाओगे, भगवान ने पहले उनको मना लिया है, अपना बना लिया है। तुम लोग कुछ भी करोगे, हिरण्यकश्यपु जैसा व्यक्ति जब प्रहलाद को नहीं कुछ कर पाया तो ये लोग वेद बना करके क्या कर लेंगे प्रहलाद का, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों को कृष्ण का होना है। कथा का सार भाव यह है कि हम कृष्ण के बने, प्रहलाद महाराज के भाव को अपने हृदय में धारण करें और प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करेंगे, प्रहलाद महाराज आप महाभागवत हो, कृपा दो कि ये भाव हम लोगों के अंदर आए, ताकि हम भी किसी को सुधारने का और स्वयं को सुधारने का प्रयास करें। यह अर्थ है, यह श्लोक कहता है ग्रंथरा श्रवत भावतम की श्री रूपा महाराज की गौर हरि प्रमानंद।